तेजस्वितुं ओजस्वितुं तेजस्वितुं प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम, यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। प्रखर तेज हो तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो, श्वासों में प्राण हो अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो, तुम महावीर हो वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो, तुम क्रांति वीर हो, तुम कर्म वीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो, ओजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।
रूस के एक महान लेखक इवान टर्गेनिव की लिखी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और जिस कहानी को यहाँ पर भी एक दो बार सुनाया है, उस कहानी का शीर्षक है द ग्रेट फूल। एक महान मूर्ख उसमें किसी गांव में एक छोटा बच्चा है। बचपन से ही उसे सब लोग मूर्ख 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 कहलाते हैं, उसके माँ बाप भी। वो जो काम करता है उसे मूर्ख की ही उपाधि दी जाती है। कितनी मूर्खता है, तुमको इतना भी नहीं समझता, तुमको इतना भी नहीं समझता। बचपन से ही वो बच्चा यही सुनते आता है कि मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता, जो मैं करूंगा वो गलत ही होगा, क्योंकि लोगों ने उसकी पुष्टि की है कई बार। इन्हीं तानों के साथ वो बड़ा होता है। जो भी काम करता है लोग उसे निराश करते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं आता है, तुम तो हो ही मूर्ख 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 मूर्ख, यू फूल यू फूल यू फूल, यू इडियट यू इडियट यू इडियट, ऐसा ही उसको कहते रहते हैं। वो परेशान होता है, कई बार वो अच्छे काम करता है तो भी उसे लोग वैसा ही जानते हैं जैसे कोई पागल हो, और वो पागलपन से मुक्त हो गया फिर भी लोग उसे नॉर्मल नहीं मानते। अगर वो थोड़ी भी गलती करे तो उस गलती को उस पुराने पागलपन के साथ तुरंत जोड़ते हैं। उसी तरह ये व्यक्ति बहुत उदास था, बहुत निराश, कुछ भी करने जाओ लोग उसे मूर्ख ही समझते थे। उस गांव में एक दिन बहुत महान ज्ञानी व्यक्ति आता है। वो भागे भागे उसके पास जाता है और कहता है, मैं क्या करूं, सभी लोग मुझे इडियट कहते हैं, फूल कहते हैं। वो ज्ञानी पुरुष गंभीर होकर थोड़ी देर मौन होकर फिर कहता है, अच्छा तुम एक काम करो, इसके बाद जब भी तुम देखो कोई भी किसी चीज की तारीफ कर रहा है तुरंत उसके अवगुणों का वर्णन करो। जैसे कोई कहे कि कितना अच्छा सूर्य है, कितना अच्छा चंद्रमा है, तुम तुरंत कहो क्या प्रूफ है इस ये अच्छा है, इसका प्रमाण क्या है। कोई कहे कि कोई बहुत अच्छा चित्र है, तुम कहना ऐसे तो चित्र एकदम फालतू, इससे तो कितने अच्छे मैंने देखे। कोई कहे कि ये इसका भाषण बहुत अच्छा है, तुम कहना पाखंड है। जब भी कोई किसी की स्तुति करे, जब भी कोई किसी की तारीफ करे, जब भी कहीं पर भी कोई महिमा होती रहे, तुम निंदा करना चालू करो फिर देखो क्या होता है। वो व्यक्ति गया, किसी ने कहा झील कितनी अच्छी है, उसने कहा ये झील गंदगी से भरी है। लोग थोड़े से रुक गए, अरे बाप रे ये तो कोई महाज्ञानी दिखाई दे रहा है। किसी ने तारीफ की, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, गुणवान है, उसने कहा अरे नाटक है ढोंग है। उनको लगा ये कोई महाज्ञानी आ गया है, जिनके सामने हम छोटे बच्चे हमें तो कुछ पता ही नहीं। किसी ने कहा कमल का फूल कितना अच्छा है, उसने कहा ये भी कोई फूल है, इसका कोई प्रमाण है, इसने तो अच्छे अच्छे मैंने देखे है। जो जो जिसकी जिसकी तारीफ कर रहा है उसकी उसकी निंदा करना चालू करो, 24 घंटे बस एक ही कार्य, दूसरों की निंदा करना। और जैसे वो निंदा करने लगा लोग उसे ज्ञानी की दृष्टि से देखने लगे। एक मास के बाद वो ज्ञानी पुरुष वापस उस गांव में आया। गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव में एक व्यक्ति मूर्ख था, अब महापंडित और महाविद्वान बन गया है, आप उनसे जरूर मिलना। और ये जो ज्ञानी था उसको पता था वो कौन विद्वान है। उससे मिलने जाते हैं, वो कहता है गुरुजी चमत्कार कर दिया आपने तो, मैं क्या था और क्या बन गया, सब लोग मुझे महान समझते अनुभवी समझते हैं, क्योंकि मैं हर चीज पर हंसी उड़ाता हूं, लोग मुझे बहुत महान दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही थोड़ी ना मैंने तुम्हें बताया था, मैं भी ज्ञानी कैसे बना, इतना जो मेरी महिमा है कि ये बहुत सीजन्ड बहुत मैच्योर्ड व्यक्ति है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे की तारीफ कर रहा हो और हम उसे प्रकाशित करें कि अरे मूर्ख तुम क्या कर रहे हो, किसकी तारीफ कर रहे हो, किस अंधकार में हो तुम, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तब उसको लगता है, हाँ भाई ये कहीं मेरी गड़बड़ तो नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मुझे तो इस व्यक्ति में गुण ही गुण दिखाई दे रहे। अब पता चला कि मैं कितना भ्रम में था। इस व्यक्ति को हम किस दृष्टि से देखेंगे जिसने हमें अंधकार के गर्त से बाहर निकाला, महाज्ञानी। तो ऐसी ये कहानी है, द ग्रेट फूल। पर इसको धारण मत करना क्योंकि इस तरह की महानता, ये होशियारी, कौन सी होशियारी है आज की मुरली से, उल्टी होशियारी है। ये लंबा समय नहीं चलेगा। तो आज की सारी मुरली गुण और अवगुण, ये दो शब्द है बस। गुणों के साथ करना क्या है, अवगुणों के साथ करना क्या है, इसकी शिक्षा है। क्योंकि सारे दिन भर जिनके संपर्क में हम आते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, लौकिक अलौकिक, जिस सेंटर पर रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, हर जगह आत्माओं के संपर्क में आना पड़ता है। और हमारी दृष्टि मलिन हो जाती है बार बार उनके अवगुण देख देख कर। बार बार दिखाई देता है ये ऐसा ही करता है, इसकी ये आदत है। और एक मुरली में एक शब्द है जिसके लिए बाबा ने कहा तुम ये बन जाओ। कौन सा शब्द है जो संसार में बहुत निंदा का शब्द माना जाता है? क्या बन जाओ जो संसार में निंदा का शब्द माना जाता है? बुद्धू, बुद्धू भव, बुद्धू प्रसाद। जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को बुद्धू कहा जाता है। बाबा ने कहा ऐसा बुद्धू ये होना अच्छा है। ज्ञान ही ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है, ज्ञान का भ्रम और ज्ञान का अहंकार। तो सबने मुरली पढ़ी तो होगी, वैष्णव, गंदगी, अपवित्र भोजन, अशुद्धि, किचड़ा, ये सारे शब्द मुरलियों में आए हैं। कीवर्ड्स, मुरली कैसे पढ़नी है, कीवर्ड्स, फटाफट फटाफट फटाफट, यहां से ये उठा लिया, यहां से उठा लिया, बस हो गया। एंड देन थिंक, पढ़ना कम है चिंतन ज्यादा करना है, पढ़ना कम है विजुअलाइजेशन ज्यादा करना है, पढ़ना कम है जो पढ़ा है उसको ड्रिल में कन्वर्ट करना है, पढ़ना कम है जो पढ़ा है उसको तुरंत, उस दिन मुरली थी कर्मों पर, तुरंत कर्मों में लाना है, डायरेक्ट एक्शन। सोचते नहीं बैठना ये करूंगा वो करूंगा, डायरेक्ट एक्शन। फिर एक्शन से इमोशंस जनरेट होंगे करने के बाद, इनडायरेक्ट मेथड। तो मुरली तो पूरी वर्ड बाय वर्ड हम नहीं लेंगे, सीधा होमवर्क पर आएंगे। क्या करना है? सबसे पहला काम वर्च्यू हंट, अर्थात जो भी व्यक्ति संपर्क संबंध में आए, सोचना इसमें ऐसे कौन से तीन गुण हैं। कोई भी हो, निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, स्तुति करने वाला, भिन्न भिन्न वैरायटी के, ये वैरायटी ड्रामा है, इसमें वैरायटी आत्माएं हैं, सबके स्वभाव संस्कार अलग है, एक ना मिले दूसरे से, वन वन की काठी। तो पहला काम क्या करेंगे, जैसे ही कोई संपर्क में आया क्या सोचेंगे, इसमें कौन सा गुण है? बाबा ने आज कहा, बाबा आज कौन सी आत्माओं को देख रहे हैं? तो प्यादे हैं, जिनमें शायद संसार के लोग सोचते कोई भी गुण नहीं, परंतु बाप को जाना, बाप को पहचाना, बाप को अपना बनाया, प्रभु पसंद बने, ब्राह्मण जीवन में चल रहे, ये क्या कम विशेषता है? ब्राह्मण हो और विशेषता ना हो, ये हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। ऐसे वाक्य ढूंढे हैं कभी? तो ये भी एक काम है। किस तरह के वाक्य ढूंढने हैं मुरली से? ये हो नहीं सकता। उदाहरण उदाहरण, सर्वशक्तिवान बाप साथ है और सफलता न हो, यह हो नहीं सकता। एक, अरे नहीं ऐसा हो रहा है उसका विश्वास तो है नहीं, दूसरा बताओ कुछ। दृढ़ता हो और सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। हाँ शिशु, संगम युग में कोई भी बात नहीं, ये हो नहीं सकता, ये चाहिए उसमें। निश्चय बुद्धि है और विजय ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो निश्चय की कमी है फिर। और सर्वशक्तिमान साथ है और माया मूर्छित ना हो, ये हो नहीं सकता। मैं चाहूं और वो हो ना हो, ये हो नहीं सकता। सफल सेवा निमित्त भाव से करें और सफलता ना हो, तो निमित्त भाव, दृढ़ता, ये सारी सफलता वाली आ गई दूसरी पॉइंट। इसके अलावा ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, हम मास्टर मास्टर कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी, मेरा कल्याण हो, ये हो नहीं सकता। ये लंबा हो गया है। पॉजिटिव थिंकिंग है और क्या, अटल विश्वास। तो क्या पुरुषार्थ करे और बाप समान न बने, ये हो नहीं सकता। नहीं पर क्या उसके पीछे कुछ दूसरा वाक्य जोड़ो, और बाप की याद में रहे और विकर्म विनाश ना हो, ये हो नहीं सकता। बाबा कहे और मैं ना करूं, ये हो नहीं सकता, पर हो तो रहा है
सोचा है
कि लाना है तो आएगा। अरे वर्च्यू हंट, जो भी आत्मा मिले, एक मिनट पॉज, एक मिनट सोचना बात करते हुए या थोड़ी देर के बाद, कि इसमें क्या गुण है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो विशेष है बहुत, पहला काम। दूसरा काम, आपका जो नाम है, जैसे किसी का नाम है राजू, तो ये जो आर है, ए जे यू है, इस एक एक शब्द में कौन सा गुण है। आर से रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का क्या चित्र है, वो चित्र बनाना है, ये नहीं लिखना है खाली। ए से एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का क्या चित्र है ये तराजू। जे, जे से कौन सा गुण है, जॉय, ब्लिस, ब्लिस का क्या चित्र बनता है, छोटे बच्चे को हंसता हुआ। यू, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझना, उसका क्या चित्र है। ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, तो इनके चित्र सोचने हैं क्या बनने हैं। तो आपका जो भी नाम है, उस नाम में जितने अक्षर है, चाहे हिंदी या अरविंद, अ से क्या अटल, अटल का क्या चित्र है, अडिग का क्या चित्र है, पहाड़, पहाड़। तो जो भी इस तरह के वर्ड होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो हाथ में कुछ भी नहीं आते, उनको सिंबल, उनका क्या बनाना है, या तो सिंबल या तो चित्र। तो ये एक दूसरा काम है। तीसरा, छोटी छोटी स्टोरीज, किस पर, गुणों की स्टोरीज, किसको सुनानी है ये स्टोरीज, स्वयं को नहीं, बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए। जैसे एक गांव में एक गरीब लड़का राजू रहता था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला, उसमें बहुत सारे पैसे थे। राजू ने सोचा, यह बटुआ किसी का हो सकता है, मुझे इसे वापस करना चाहिए। राजू ने बटुए के मालिक को ढूंढा और उसे लौटा दिया। बटुए के मालिक ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे एक इनाम दिया। राजू ने मैसेज किया कि ईमानदारी हमेशा जीतती है। फिनिश। अच्छी कहानी है ना? हाँ, तो ऐसी कहानी बनानी है। और कौन से गुणों पर? आपके जो नाम का एक कोई भी, उसमें से एक उठाओ। जैसे अडिग, अडोलता, तो इसमें एक छोटी सी कहानी। कहानी के शब्द होने चाहिए 50 और 60, 70 के बीच। लंबी चौड़ी कहानी नहीं बनानी है, छोटी सी, जिसमें शब्द कितने हो, 50, 60 या 70 तक आसपास। छोटी सी कहानी। और कहानी कहीं से ढूंढनी नहीं है, कहानी खुद बनानी है। कहानी के पात्र और पात्रों का नाम खुद देना है। स्क्रिप्ट राइटिंग। कविताएं बहुत लिख ली, गीत भी बहुत लिख लिए और गाए भी, सुरीली और बेसुरीली दोनों आवाजों में। और अभी क्या करना है? कहानी लिखनी है, कहानी लेखन। यह है आज का कार्य। तीसरा, चौथा है ट्रांसफॉर्मेटिव राइटिंग, परिवर्तन लेखक लेखन। इसको क्या कहते हैं? परिवर्तन लेखक। हमारे जीवन में आई हुई एक निगेटिव सिचुएशन, उससे हमने क्या गुण सीखे। उदाहरण, उदाहरण, कोई भी उदाहरण दो। मीटिंग चालू थी, ठीक है, और किसी भाई ने, हमने जो सुझाव दिया उसका बहुत जोरदार विरोध किया, और वो भी सबके सामने, और ये दिखा दिया कि हमने, हमारी जो आइडिया थी कितना मूर्खतापूर्ण विचार था। हमको बहुत बुरा लगा। यह है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन से हमको लिखना क्या है, कौन सा गुण हमने सीखा। बाद में पता चला कि उसने वो जो कहा, वो उस प्रोजेक्ट के विषय में कितना पैशनेट था, वो कितनी गहराई से सोच रहा था उसके विषय में। हम जो सोच रहे थे ऊपर ऊपर से सोच रहे थे, वो इतना गहराई से सोच रहा था। और उसको देखो, हम तो बस मीटिंग में गए थे और मीटिंग में अपना पॉइंट सुना के भूल गए। वो तो 24 घंटे उसी में लगा हुआ है, वो दिन रात उसी में लगे हुए हैं। उनके लिए वो जीवन है, वो ये चाहते ही नहीं कि इसमें जरा सी भी गलती हो। और हमको अपने ईगो की बात लगी कि इसने मेरे ईगो को हर्ट किया, सबके सामने बोल दिया। बाद में भी तो बोल सकता था, पर उन्होंने उस समय जो बोला, तो ये हम इस तरह से उसको ले रहे थे। परिवर्तन लेखन, इसको क्या कहते हैं? परिवर्तन लेखन। अपने जीवन में आई हुई निगेटिव सिचुएशन, मधुबन में आए, कमरा मिला, दूसरे दिन कहा गया कमरा खाली करो, दूसरे कमरे में जाओ। बाबा मिलन हो रहा है, बाबा मिलन में आराम से बैठे एकदम सामने जाके, और फिर वो आ गए, उन्होंने कहा यहां से उठो, ये मधुबन निवासी हो गए, तुम पीछे, एकदम पीछे जाना, यहां नहीं बैठना। तो बहुत ही इधर ऐसी चोट लगी कि बाबा कब आए और बाबा कब चले गए पता ही नहीं चला। अपनी घाव को ही सहलाते रहे, मलम लगाते रहे। बाबा मिलन की 4 दिन से तैयारी चालू थी, मौन धारण किए हुए था, सब खलास। बाबा मिलन हो रहा था, बाहर आके निकले, चप्पल ही नहीं। हम उन पर हंस रहे थे, देखो कितने कम निश्चय बुद्धि वाले हैं लोग, जो अपनी चप्पल अपनी थैली में रख के, गोदी में रख के बाबा मिलन कर रहे, ऐसा दूसरों के लिए सोच रहे थे, और जब बाहर निकले तो हमारी गायब। पहन गया तो ये, अच्छा अच्छा पहन रहा था। पर कई बार ऐसा भी होता है कि दो जूते, दो चप्पल सिमिलर होते हैं, इतने हजारों लोग हैं, तो कोई भी ऐसी निगेटिव सिचुएशन जो आती है उसमें परिवर्तन लेखन, अर्थात उसमें वो लिखना है कि इससे मैंने क्या सीखा। अच्छा ही हुई गई चप्पल, किसी को तो मिल गई होगी, वो उसका यूज करे। अब जो हुआ अच्छा ही हुआ, जाने दो, गई तो गई, वो हमारी थी नहीं ना, आई और चली गई, गई तो बहुत अच्छा हुआ, ना उसको ज्यादा जरूरत होगी या हमने कभी उससे चप्पल ली होगी पिछले जन्म में, चुराई होगी और वापस ही नहीं दी। ऐसे थोड़ी ना कोई लेता है, कोई किसी को ग्लास भी देता है पानी का तो बिना हिसाब किताब के नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ तो था हिसाब। तो सूक्ष्म बंधन क्लियर हो रहे। तो ये आज की मुरली से एक वर्च्यू हंट, हंट अर्थात ढूंढना, जो भी व्यक्ति संपर्क में आया इसमें कौन सा कुछ तो गुण होगा, कुछ तो है, हमेशा उसके अवगुण ही देखे, हमेशा उसको निंदा करते हुए देखा है, फिर भी बाबा ने उस आत्मा को चुना है तो जरूर कुछ तो विशेषता है जो किसी और में नहीं है। उसे एक विशेषता के लिए भगवान ने यह सौदा किया है, उसे एक विशेषता के लिए, उसमें 99 अवगुण है, उन 99 अवगुणों को बाजू में रख के भगवान ने देखा ये गुण केवल इसी में है, इसके अतिरिक्त ये काम दूसरा इस कायनात में कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा सौदा भगवान ने रिस्क लिए। फर्स्ट पेंटिंग गुण ना दिखाई दे तो अमृत वेला चिंतन करो तो अपने आप दिखाई देगा कुछ तो, दिन में नहीं दिखाई देता है अमृत वेला, बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है। पेंटिंग अपना नाम, उसके जो जो अक्षर है उसमें क्या क्या गुण है, उसका चित्र खाली वहां तक छोड़ना नहीं है, और उसकी एक छोटी सी कहानी। वो कहानी कैसी हो, फेमेंस मेथड, फेनिमेंस मेथड जो बताई थी मेमोरी ट्रेनिंग में, कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसे ऐसा पढ़ो कि अगर मुझे ये एक 5 साल के बच्चे को सिखाना है तो मैं किस तरह से उसको बताऊंगा समझाऊंगा, उसको कहते हैं फेनिमेंस मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। यहाँ पे बिठाया था ना, तो वो मेथड। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी स्टोरी बनानी है, अनुशासन। अब अनुशासन पर एक कहानी बनानी है, उसमें केवल 50 शब्द हो, क्या सोचते हो क्या बन सकती है, सोचना है, ठीक है। ये एक और लास्ट, एक नकारात्मक अनुभव जीवन का। मधुबन में आए, 6 मास सेवा की और अभी जा रहे हैं, किसी ने कह दिया अच्छा माता जी खाए पिए और चल दिए, ऐसी चोट लग गई, दोबारा रात भर जागते रहे मधुबन के आंगन में रंगोली बनाते हुए न्यू ईयर के लिए। सुबह सुबह कोई आता है कहता है ये किसने बनाया, कौन से सेंटर से हो, तुमको रंगोली भी नहीं आता, कुछ भी बना के रख देते हो, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना चाहिए। सुनने के बाद संकल्प किया, आज के बाद ऐसा काम ऐसी सेवा हाथ भी नहीं लगाएंगे, पहले तो जागो रात भर और ये सुनने के लिए। तो ये है निगेटिव अनुभव। अब निगेटिव अनुभव को तुरंत तो नहीं दिखाई देगा, मे भी अमृत वेला उसके कुछ गहरे राज दिखाई देंगे। तो परिवर्तन लेखन और आज की मुरली का जो मुख्य है वो है अवगुण के साथ क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी 18 बातें हैं जो अवगुण के साथ नहीं करनी है। सबसे पहला, 3 बातें तो मुरली में आ चुकी है, अवगुण को ना देखो फर्स्ट, दूसरा वर्णन नहीं, दूसरा धारण नहीं करो, तीसरा वर्णन नहीं करो। इन तीनों में एक्चुअली सब समाया हुआ है, पर यह वैसा ही है जैसे एक बहुत दुखी तनावग्रस्त व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास जाता है और कहता है कि मेरा हाथ देखकर बताओ कि मैं तनाव से कैसे मुक्त हूं। ज्योतिषी कहता है इससे तनाव मुक्त नहीं होगा, मैं एक गीता पाठी को जानता हूं, उसके पास जाओ। एक अध्यात्मवादी, एक ऐसा व्यक्ति है जो गीता को लोगों को सिखाता है समझाता है, उससे तुम सीखो, वो उसके पास जाता है और वो कहता है कि मुझे गीता सीखनी है, कितना दिन लगेगा। वो गीता पाठी कहता है कि 3 मास का तो ट्रेनिंग है, गीता को समझने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 3 महीना। वो कहता है 3 महीना मेरे पास टाइम कहाँ है, इतना बड़ा बिजनेस, कुछ शॉर्ट क्रैश कोर्स। वो कहता है ठीक है 18 अध्याय नहीं पढ़ेंगे, 18 अध्याय को 3 महीने लगते, हम एक काम करते तुम केवल 18 अध्याय पढ़ो, कितना टाइम लगेगा। वो कहता है उसमें 3 हफ्ते लग जाएंगे। 3 हफ्ता मेरे पास टाइम कहाँ है। वो कहता है ठीक है, फिर उस 18वें अध्याय में 1 ही श्लोक याद कर लो, सर्वधर्मान परिदज्य मामेकम शरणम व्रज आम तो सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा सुच। वो कहते बाप रे इतना बड़ा, मुझे तो एक हफ्ता लगेगा इसको, आई कैन नॉट। कुछ और कुछ शॉर्टकट है तो बताओ। गुरु कहते अच्छा शॉर्टकट तो ये जो लास्ट आता है ना मा सुच, बस इतना याद कर लो बोलो। वो कहते हैं मा सुच, हाँ बस हो गया। तो बोलते इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डोंट वरी, टेंशन नहीं करो। वो बोलते कैसे? बोलते इसीलिए तो इतनी बड़ी गीता है, केवल एक शब्द समझने से कुछ नहीं होगा, पूरा सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़नी पड़ेगी, तब एक अव्यक्त मुरली समझ में आएगी, तब एक स्लोगन समझ में आएगा। एक स्लोगन समझने के लिए ढेर सारी अव्यक्त मुरलियां चाहिए, तब वो पकड़ में आता है। तो आज तो 18 चीजें यहां निकालेंगे। सबसे पहले अवगुणों के साथ क्या नहीं करना है, पहला देखना नहीं है, ये मुरली में आया है। दूसरा उनको धारण नहीं करना है। तीसरा उनका वर्णन नहीं करना है, अब यहां आगे चिंतन। चौथा उस व्यक्ति को उसके अवगुणों की बार बार याद नहीं दिलानी है, उससे क्या होगा? वो दिल शिकस्त हो सकता है, उदास हो सकता है, इरिटेट हो सकता है, चिढ़ सकता है तुमको देखते ही। दूसरी तरफ माँ बाप से क्यों भागते हैं? पिताजी जब टूर पर जाते हैं तो बच्चे क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो लोग उनको वही समझाते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ये करो वो करो, डांटते ही रहते हैं। इसीलिए मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो कितनी उनको अंदर से थोड़ी खुशी भी होती है कि अभी उनको कोई नहीं कहेगा ना पढ़ो। बच्चा बच्ची लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के, गेस्ट आते हैं घर पे पूछते क्या कर रहे हो तुम मेहमान, पूछते हम कहते हैं हम मम्मी पापा का गेम खेल रहे, मम्मी पापा वाला गेम। तो याद नहीं दिलाना है बार बार, एक बार बता दिया, एक बार करेक्शन दे दिया, बस बाबा ने कहा तुम सुप्रीम कोर्ट में अपनी केस दाखिल कर लो, बस जज खुद मत बन जाओ, वकील खुद मत बन जाओ, लड़ो मत, बता दिया जो निमित्त है हो गया, जो होगा होगा। फिर उसकी भी ताकत चाहिए कि जो हो रहा है उसे देखते रहो, क्योंकि जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्या करें। तो चौथा क्या है? उसको याद नहीं दिलाना। अगला अवगुणों की तुलना नहीं करनी है। दो व्यक्तियों में अवगुण है पर दोनों की तुलना भी नहीं करना है, ये कम झूठ बोलता है या ज्यादा झूठ बोलता है। अवगुणों की तुलना, ये चौथा। पांचवा छठवा अवगुणों को बढ़ाना नहीं है, एग्जैजरेट नहीं करना है, अतिशयोक्ति नहीं करनी है उसकी। किसी ने कभी एक बार तो लेट आया, हमेशा टाइम पर आता है, पर हम बोलते क्या ये हमेशा ही लेट आता है, इसकी तो आदत ही है, सहज बोल देते जबकि हमें पता कुछ भी नहीं है उसके बारे में। तो बढ़ाना नहीं है। अगला प्रचार नहीं करना है उसका। एक बोला था वर्णन, यहां है सेवेंथ प्रचार, प्रोपोगंडा, फैलाना, इधर उधर 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 फैला देना। किसके बारे में हमको क्या पता है? कुछ भी पता नहीं है। जो इससे पहले भी कहा था, एक साधु सुबह सुबह समुद्र तट पर घूमने निकलता है, देखता है एक स्त्री है जिसकी गोदी में एक पुरुष सोया हुआ है, वहां पर बॉटल है, दारू की बॉटल आधी पानी और आधा गिरी हुई। वो सोचता है कैसा कलयुग आ गया है, सुबह सुबह लोग भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और यहां देखो क्या कर रहे हैं समुद्र तट पर। यह साधु की दृष्टि है, उसने ये देखा, पर उसको ये नहीं पता कि वो कौन है। वो माँ है, वो मछुआरा है, रात भर वो समुद्र में था मछलियां पकड़ने के लिए, उसे कुछ भी नहीं मिला, सुबह सुबह आ गया थक गया, माँ की गोद में सोया हुआ है, जो बॉटल है घर में पानी भी नहीं है, वो पुरानी बॉटल है जिसमें माँ पानी भर के लेके आई है, बेटे को पिलाया पर इतना थक गया है कि माँ की गोद में सो गया है। ये है सत्य। और साधु ने ब्रह्मचर्य, पवित्रता, धर्म, नीति सारों के बारे में सोच लिया, जबकि सत्य कुछ और ही था। उधर से भाई आ रहा है, बहन आ रही है, दोनों भाई बहन है, पर वो वहां पहुंचने से पहले कितनी सारी बातें हो गई, तो क्या करना है, प्रचार नहीं करना है। उसके बाद में विकारों अवगुणों से चिढ़ना नहीं है, दूसरों के अवगुणों से चिढ़ना नहीं है, क्योंकि कमरा ऐसा मिलता है कि जिसमें जो बाजू वाला है ऐसी खर्राटे खर्राटे लेता है, पूरा कमरा हिलता है उसमें। बाथरूम में जाते हैं जो निकलते तो बाल ही बाल, अंदर घुसते तो एक घंटा बाहर नहीं निकलते, क्या करते पता नहीं, रगड़ते रहते साबुन से, गोरे तो होते नहीं फिर भी, करते क्या है पता नहीं। योग करने हम बैठे, बाजू वाला ईयरफोन लगा के उसमें जोर जोर से आवाज आ रहा है, मैं आत्मा हूं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी आत्मा होने से, तुम आत्मा क्यों हो, बंद करो। अगला, अवगुणों को स्थाई नहीं समझना है, अवगुण है चले जाएंगे, स्थाई नहीं है कोई भी अवगुण। अगला, अवगुणों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देनी है। दसवां, प्रतिक्रिया, और ग्यारहवां, दूसरों के अवगुणों को माफ करने में देरी नहीं लगानी है, तुरंत माफ। अगला, अवगुण जो है उससे अपने सहनशीलता की परीक्षा नहीं लेनी है, ये नहीं सोचना है कि मैं इसके अवगुण देखते रहूंगा, देखो मैं कितना सहनशील हूं, इस तरह की परीक्षा नहीं लेनी है। दूसरा, अवगुणों के वजह से उस आत्मा से दूरी नहीं बनानी है। अगला, वो अवगुण हमारे कर्मों में ना दिखे। अगला, वो अवगुणों हमारे संस्कार का हिस्सा ना बन जाए। अगला, उस अवगुण को याद ना करे। किसी का अवगुण है, हम बार बार याद करते रहेंगे तो चिंतन में चला जाएगा। अगला, उस अवगुण के आधार पर कोई निर्णय ना ले। और लास्ट 18वां, उस अवगुण के आधार पर किसी का मनोरंजन, किसी को मनोरंजन का विषय ना बनाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को हर्ट होता है, एकदम डीप हर्ट हो जाता है कि हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा, हम ऐसे है क्या, हमारे पीठ पीछे जब कोई कुछ बोलता है तो कितना दुख होता है, होता है ना दुख, अच्छा नहीं लगता। सेंसिटिव इमोशनल बीइंग्स है सभी, तो ये इतने काम नहीं करने। कौन कौन से, पहला देखना नहीं, दूसरा नाराज, आज एक्टिविटी किसकी है, आ जाओ, दूसरा, तीसरा, तब तक आ जाओ, वर्णन नहीं करना, याद नहीं करना, याद नहीं दिलाना। अगला, तुलना नहीं करना, बढ़ाना नहीं, चिढ़ना नहीं, प्रचार नहीं करना, चिढ़ना नहीं, उसको स्थाई नहीं समझना, उससे प्रभावित नहीं होना, उसको माफ करने में देरी नहीं करना, और उसके सहनशीलता की परीक्षा नहीं बनाना उसको, और उस आत्मा से दूरी नहीं बनाना, उस आधार पर कर्मों में ना आए, संस्कारों में ना आए, निर्णय ना उस आधार पर हो और ना ही उस आत्मा का, उसको मनोरंजन का साधन बनाना है, किसी के अवगुणों का मनोरंजन का साधन बनाकर उसकी चर्चा करना। तो ये सारे के सारे 18 पॉइंट्स पाप की श्रेणी में गिने जाएंगे और मन को भारी करेंगे। और यदि हम किसी के बारे में ये सब करते हैं तो दूसरे भी हमारे बारे में सेम करेंगे। अगर तुम किसी की निंदा करो तो तुम्हारी दुगुना निंदा होगी, ये निंदा हो ना हो ये हो नहीं सकता। एक्सेलेंट, ओम शांति।
आज की मुरली है सारी गुण और अवगुण के ऊपर। तो बाबा ने कहा कि ना हम अवगुण देखेंगे, ना धारण करेंगे, ना वाणी से वर्णन कर, ना परचिंतन करने लिस्ट में आएंगे। तो हम आज की एक्टिविटी लेंगे गुणों के ऊपर। तो एक्टिविटी का नाम है गुणों के गुब्बारे। तो सभी को एक एक एक्टिविटी में दो स्टेप हैं। पहला है कि सभी को गुब्बारे दिए जाएंगे, उनको फुलाना है। फुलाने के बाद आपका जो नाम है फर्स्ट अक्षर जो आता है तो उसी से आपको गुण लिखना है बलून के ऊपर। पेन भी दे समक्षण पेन भी दे देना। नहीं नहीं पहले फुलाइए फिर लिखिए, नहीं फटेगा, मार्कर से लिखेंगे ना। जिनसे नहीं हो गया हो रहा तो वो एक दूसरे की हेल्प कर दीजिए। यहाँ ये
जिनसे फुलाना नहीं हो रहा है एक बार ओपीडी में आ जाना, उनको प्रॉब्लम है। इधर नहीं दिए
मार्कर समझो ना, बन नहीं इधर नहीं है।
गुण लिखना है या अगुण लिखना है?
गुण लिखना है। गुण। अपने नाम का पहला अक्षर आता है जो भी ए बी गुण लिखना है। गुण लिखना है अपने नाम का। हो गया सारा?
इधर मिला ही नहीं है, मैं इधर पीछे दो।
खराब है ये, खराब है,
खराब है। जिनको नहीं मिला वो इमेजिनरी करो। चलो नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी।
हो गया लिखने के बाद गुब्बारे को हवा में छोड़ना है और गुब्बारा नीचे नहीं आना चाहिए, किसी का भी हम ऊपर कर सकते हैं। तो घंटी बजेगी उसके बाद एक गुब्बारा अपने हाथ में लेना है तो वो आपका होगा गुण। नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है? मैं बजाती है गीत। हाँ गीत
का ऊपर करना है, किसी और का भी ले सकते
हैं। स्टार्ट ऊपर करना, नीचे नहीं गिरना चाहिए गुब्बारा। करो बंद कर, बंद कर, बस स्टॉप। तो जो जिसको जो गुड मिला वो उसका ही है। तो बाबा ने कहा है कि गुण देखना है, हम अपने अंदर गुण धारण करेंगे, दूसरों को गुणों के विशेषताओं से देखेंगे तो हमें क्या होगा, खुशी मिलेगी। जैसे अभी आप सब लोगों ने एक्टिविटी की तो खुशी मिली ना, तो हम दूसरों को गुण रूप से देखेंगे तो खुशी मिलेगी।
पहला चरण पूरा हुआ,
ये दूसरा था। क्या
करना, क्या
हो गया? हाँ ठीक है, एक बार और करते हैं। Yeah. ओम शांति। जिनको भी जो गुण मिला है तो आज हम ये करेंगे कि ये गुण में ही रहना हमें आज के। ठीक, ओम शांति।
शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी,
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी।
शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति। प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी,
ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याण।
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा
प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम।
हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम।
शिव शक्ति
तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति,
महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ।
शासन के महानायक तुम
सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी
सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी
शिव शक्ति